السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإنك لعلى خلق عظيم. وقال في موضع آخر: من أطاع الرسول فقد أطاع الله. وقال في موضع آخر: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، میرے محترم بزرگوں، دینی و ایمانی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے جب سے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اس کی ابتدا سے ہی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے مخصوص بندوں کو اپنے مخصوص مقصد اور مخصوص مشن کے تحت پیدا فرمایا، اور جب انسانوں کو پیدا فرما کر اللہ تبارک و تعالی نے اس زمین پر بھیجا، تو ساتھ ہی انہی انسانوں میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے چند منتخب اور مخصوص بندوں کو بھی اپنے خاص مشن کے لیے متعین فرمایا. اور وہ مشن کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالی کا وہ مشن یہ تھا جو شروع سے ہے اور ابھی جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا. وہ مشن یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں آ کر اپنی تخلیق کے مقصد کو پہچانے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں بھیجنے کے جو مقاصد طے فرمائے ہیں، ان مقاصد کو سمجھے اور پوری زندگی اپنی اسی کے مطابق گزارنے کی کوشش کرے. اور اگر ہم صرف ایک مقصد کے اندر ان تمام مقاصد کو جمع کرنا چاہیں، تو وہ مقصد یہ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق ڈھال لے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپنی ساری زندگی میں، زندگی کے ہر ہر شعبے میں اور زندگی کے ہر ہر کام میں، وہ ایک خاص مقصد کے تحت اور ایک خاص مشن کے تحت زندگی گزارنے کا عادی بن جائے. اور انسان اس بات کو سمجھ لے، اپنے ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لے کہ انسان اس دنیا میں بیکار نہیں پیدا کیا گیا ہے، اس کے بھیجے جانے کے کچھ مقاصد ہیں. اور اگر وہ اپنی نادانی میں، اپنی غلط فہمی میں، اپنی غفلت میں ان مقاصد کو اگر وہ اصلی مقصد سمجھتا ہے، جو مقاصد اصل میں نہیں ہیں، اور وہ دنیا کے پیچھے بھاگ کر اور اپنی ساری توانائیوں کو، اپنی طاقتوں کو، اپنے ذہن و دماغ کی صلاحیتوں کو دنیا کے پیچھے ضائع کر کر یہ سمجھتا ہے کہ یہی میرے بھیجے جانے کا مقصد ہے, تو وہ مقاصد تو جانوروں سے بھی پورے ہو رہے ہیں. جانور بھی اپنے ذات کے لیے, اپنے پیٹ کو بھرنے کے لیے, اپنے آپ کو خطرات سے بچانے کے لیے کوشش کرتا ہے, محنت کرتا ہے. اس کو جتنی دماغی صلاحیت اللہ کی جانب سے دی گئی ہے اس کا استعمال کرتا ہے. اگر انسان بھی اپنی صلاحیتوں کو اسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور اسی طرح سے اپنی زندگی کو گزارتا ہے تو یہ انسان کی غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء کو بھیج کر انسانوں کو بار بار ہر زمانے میں جب جب انسانوں نے اپنے تخلیق کے مقصد کو بھلا دیا, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو بھیج کر ان کے بھیجے جانے کے مقاصد کو یاد دلایا اور بار بار تنبیہ کی گئی کہ تم اس دنیا میں کیوں آئے ہو, اس دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے, اللہ تبارک و تعالی انسان سے چاہتا کیا ہے. اور انبیاء کا یہ سلسلہ نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے مکمل فرما دیا. اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب نازل فرمائی اس کتاب کی بھی یہ شان اللہ نے بنائی اور اس کی یہ شان رکھی کہ اس کتاب کے بعد اب کوئی کتاب نازل نہیں ہوگی. یہ اللہ کا آخری پیغام ہے انسانوں کے نام. انبیاء کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی اور بندوں کا جو رشتہ تھا, کنیکشن تھا, ایک براہ راست جو تعلق تھا, وہ ایک طرح سے ظاہری معنوں میں ختم کر دیا گیا. لیکن حقیقی معنوں میں قرآن مجید کے ذریعے سے, قرآن مجید کی شکل میں اس تعلق کو باقی رکھا گیا کہ اگر انسان اس بات کو سمجھنا چاہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہتا کیا ہے, اللہ تبارک و تعالی کی منشا کیا ہے, تو وہ قرآن مجید کا مطالعہ کر سکتا ہے, قرآن مجید کو پڑھ سکتا ہے, اس میں غور و فکر اور تدبر کر سکتا ہے, اور قرآن مجید کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو, آپ کی حیات مبارکہ کو رہتی دنیا تک کے لیے محفوظ کر دیا. اگر قرآن مجید کو صحیح معنوں میں انسان سمجھنا چاہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا چاہے تو اس کے لیے اولین اور بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان نبی آخر الزمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرے اور آپ کی زندگی میں غور و فکر کرے کہ آپ نے قرآن مجید کو کس طرح سمجھا, قرآن مجید کی عملی اور پریکٹیکل ترجمانی حضور نے کس طرح سے کی. ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضوان اللہ رضی اللہ عنہا سے ایک صحابیہ نے پوچھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے, تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ کان خلقہ القرآن, کہ آپ کے اخلاق قرآن تھے. اس کا مفہوم یہ ہوا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو باتیں ارشاد فرمائیں, جو مقاصد بیان فرمائے, جو احکامات نازل فرمائے, اس کا عملی نمونہ اللہ تبارک و تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے لیے محفوظ کر دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت اور آپ کی حیات طیبہ پر اگر غور کیا جائے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء بھیجے گئے, جتنے بھی مصلحین, ریفارمرز اور جتنی بھی بڑی بڑی شخصیات اس دنیا میں آئیں, جنہوں نے اس دنیا میں کوئی ایسے کام کیے جن کے اثرات پوری تاریخ پر مرتب ہوئے, پوری انسانی سماج اور انسانی سوسائٹی پر مرتب ہوئے, اور ان سے پوری دنیا نے استفادہ کیا, فائدہ اٹھایا اور رہتی دنیا تک فائدہ اٹھاتی رہے گی, ان تمام شخصیات کی آپ ایک فہرست بنائیے اور اس میں آپ جائزہ لیجئے ان کا, तो आप उसमें से किसी एक शख्सियत को भी पेश नहीं कर सकते, चाहे वो दूसरे अंबिया ही क्यों ना हो, कि जिनकी शख्सियत को आप पेश करके ये दावा कर सकें कि इनकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर महफूज है और वो तारीखी हैसियत से महफूज है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की सबसे बड़ी खसूसियत यह है कि हम तारीखी एतबार से उसकी तहकीक कर सकते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सा काम कब किया, उसकी हैसियत हम तारीखी तौर पर महफूज पाते हैं। उसका सन, उसकी तारीख, उसका दिन, ये तमाम चीजें हमें किताबों में और सीरत की बड़ी किताबों में हमें महफूज मिलती हैं। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की वो खसूसियत है जो हमें दुनिया की किसी दूसरी शख्सियत की सीरत में और उनकी जिंदगी में नजर नहीं आती। इस सिलसिले में सबसे बुनियादी बात यह है कि इंसान जब से पैदा हुआ और जब तक रहेगा, उसको अपनी जिंदगी गुजारने के लिए मुख्तलिफ मैदानों में अपने कदम बढ़ाने के लिए इंसानों को इंसानी नमूनों की जरूरत पड़ती है। जब भी इंसान कोई काम करता है तो वो देखता है कि दूसरे लोग, हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे आइडियल हो सकते हैं, उन्होंने इस काम को किस तरह से किया है, उनकी जिंदगियां किस तरह की हैं। जो कामयाब शख्सियात इस दुनिया में गुजरी हैं या हमारी नजरों में जो शख्सियात हैं, अगर हम भी उस तरह बनना चाहते हैं तो हम किसी ना किसी को रोल मॉडल बनाते हैं, हम अपना आइडियल बनाते हैं। ये इंसान की फितरत है। लेकिन मेरे अजीजों दोस्तों, अगर इस पूरी इंसानी तारीख में कोई एक ऐसी शख्सियत का इंतखाब करना हो, हमें अगर कोई ऐसी शख्सियत हमें चुनना हो जो तमाम इंसानियत के लिए, चाहे वो किसी इलाके के रहने वाले हों, चाहे वो कोई जबान बोलते हों, उनकी तहजीब, तमद्दुन, उनका कल्चर, चाहे जो हो, वो जिस जमाने से ताल्लुक रखते हों, चाहे जितने अप टू डेट हों, चाहे जितने पुराने जमाने के लोग हों, चाहे जितने तरक्की याफ्ता हों या चाहे जितने पिछड़े हुए हों, चाहे वो जिस मजहब से ताल्लुक रखते हों, अगर कोई वाहिद शख्सियत तमाम इंसानों के लिए नमूना बन सकती है और जिंदगी के तमाम शोबों में नमूना बन सकती है, तो वो सिर्फ एक जात है और वो नबी आखिरुज़्ज़मा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक है। और ये वो हकीकत है और ये वो बात है जिसे सिर्फ मुसलमान होने की हैसियत से मैं नहीं कह रहा हूं, या मुस्लिम मुसन्निफीन ने, मुस्लिम स्कॉलर्स ने या राइटर्स ने नहीं कही, बल्कि इसका एतराफ उन लोगों ने भी किया है जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं, जिनका नबी आखिरुज़्ज़मा पर ईमान नहीं, जिनका कुरान मजीद पर ईमान नहीं, इसका एतराफ उन लोगों ने भी किया है। आप में से बहुत से लोगों ने बहुत सी किताबें पढ़ी होंगी। एक बहुत मशहूर किताब, एक अंग्रेज मुसन्निफ गुजरे हैं, माइकल हार्ट, उन्होंने एक किताब लिखी थी, दी 100। उस किताब में उन्होंने पूरी इंसानी तारीख की 100 अजीम शख्सियात को जमा किया है। और वो जो मुसन्निफ हैं, जो राइटर हैं, वो मुसलमान नहीं हैं, वो एक ईसाई मुसन्निफ हैं। लेकिन अगर आप में से बहुत से लोगों ने वो किताब अगर नहीं पढ़ी होगी तो आपको जानकर ये हैरत होगी कि उस पूरी फहरिस्त में उन्होंने सबसे पहले जिस शख्सियत का नाम रखा है वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत है। और जब उन्होंने वो किताब लिखी तो यूरोपियन स्कॉलर्स की जानिब से उन पर एतराज भी किया गया, उनको उन पर तनकीद की गई कि आपने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतखाब, मोहम्मद का इंतखाब कैसे किया, और भी बड़ी अजीम शख्सियात गुजरी हैं। तो उन्होंने उसके जवाब में जो बात लिखी है वो बात ऐसी हकीकत है जिससे शायद हम भी ना वाकिफ हों। उन्होंने उसके जवाब में कहा कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ही वो एक वाहिद ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने जिंदगी के हर मैदान में ऐसा कामिल नमूना और मॉडल छोड़ा है जिसकी मिसाल हमें दुनिया की किसी दूसरी शख्सियत में नजर नहीं आती। अगर हम अंबिया کے تعلق سے بات کریں، ہم دنیا کے بڑے بڑے انبیاء کا نام لیں، چاہے وہ حضرت نوح ہوں، حضرت ابراہیم ہوں، حضرت اسماعیل ہوں، یا حضرت موسیٰ ہوں جن کے ماننے والے یہودی کہلاتے ہیں، یا حضرت عیسیٰ ہوں جن کے ماننے والے عیسائی ہیں اور دنیا میں اس وقت ان کی تعداد سب سے زیادہ ہے، ان تمام انبیاء کی مثال ہم لیں اور ان کی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ ان کی زندگیوں اور ان کی سیرت کا کتنا حصہ تاریخی طور پر مستند حوالوں سے ہمارے سامنے آج موجود ہے، جن کے بارے میں یقین کے ساتھ خود ہم نہیں بلکہ ان کے ماننے والے، ان کے مذہب کے لوگ یہ کہہ سکیں یقین کے ساتھ کہ یہ باتیں واقعی ان کی زندگی سے تعلق رکھتی ہیں. آپ ایک نام نہیں پیش کر سکتے. خود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اگر ہم بات کریں اور ان کی زندگی کا جائزہ لیں تو ان کی زندگی کی بہت مختصر حالات ہمیں ملتے ہیں، اور ان واقعات کے بارے میں بھی ہم یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ واقعی ان کے حقیقی حالات ہیں. اور اگر ہم ان کو جمع کریں تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے تاریخی حوالوں سے کہ ان کی کل عمر 33 سال ہوئی تھی. اگر ہم ان کے بارے میں موجود تمام واقعات کو جمع کریں تو شاید ان 33 سالوں میں سے 2 سال، 3 سال یا 5 سال کے واقعات کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ واقعات ہمیں ان کے بارے میں معلوم ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر ہم بات کریں اور دوسرے انبیاء کے تعلق سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موازنہ کریں تو جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی، نبوت سے پہلے کے بھی حالات ہمیں ملتے ہیں، لیکن جب سے نبوت دی گئی، جب سے آپ کو نبی بنایا گیا 40 سال کی عمر میں، جب سے آپ کے اوپر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کا نزول شروع ہوا، اس وقت سے لے کر آپ کی وفات تک ایک ایک لمحے کے حالات موجود ہیں، اور موجود صرف ایسے نہیں ہیں کہ وہ اندازے ہیں، کسی کے گمان یا قیاس ہیں، بلکہ ان کے بارے میں مستند تاریخی حوالے موجود ہیں، اور وہ پورے سلسلہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج کی دنیا تک. یہ وہ خصوصیت ہے میرے بھائی اور دوستو جو ہمیں دنیا کی کسی شخصیت میں نظر نہیں آتی، اور یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر پیش کرتی ہے کہ جس کو انسان زندگی کے ہر شعبے میں، اور ہر انسان چاہے وہ زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا جو کام ہو، اس کا جو پروفیشن ہو، وہ جو زبان بولتا ہو، اس کا جو کلچر ہو، جو اس کا تمدن ہو، وہ جس علاقے میں رہتا ہو، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لیے رہنما اور رول ماڈل بنا سکتا ہے. میرے عزیزو، خاص طور پر اس زمانے میں اس بات کی شدید ضرورت محسوس کی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں. ایک مسلمان کی حیثیت سے پوری دنیا میں ہمارا جو تعارف ہونا چاہیے، ایک نبی کے، آخری نبی کے ماننے والے کی حیثیت سے ہماری جو پہچان ہونی چاہیے، ہم اپنا جائزہ لیں کہ دنیا میں ہماری پہچان کیا ہے، ہمارا تعارف کیا ہے، لوگ ہمیں کس حیثیت سے جانتے ہیں، پوری امت محمدیہ کی دنیا میں کیا تصویر ہے، ان کی کیا امیج ہے. اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں یقینی طور پر اس بات کو ماننا پڑے گا کہ ہمیں ایک انقلابی تبدیلی کی ضرورت ہے، ہمیں ایک ایسی تبدیلی کی ضرورت ہے کہ جو پوری دنیا میں ہماری اس پہچان کو بدل کر رکھ دے، جس پہچان کو بنانے میں بہت سارا ہاتھ، بہت سارا کردار، رول غیروں نے نبھایا ہے اور کافی رول خود ہم لوگوں نے نبھایا ہے. آج پوری دنیا میں اسلام کی، پیغمبر اسلام کی، قرآن مجید کے پیغام اور اس کے احکام کی जो तस्वीर बनाकर पेश की गई है वो तस्वीर यकीनी तौर पर नहायत गलत है और उसके जिम्मेदार खुद हम हैं। जब तक हम खुद इस जिम्मेदारी को कबूल नहीं करेंगे, हम इस चैलेंज को कबूल नहीं करेंगे कि जो इमेज पूरी दुनिया में इस्लाम की, मुसलमानों की, पैगंबर इस्लाम की बना दी गई है, उसको संवारने में, उसको सही रुख देने में सबसे बड़ा किरदार अगर कोई अदा कर सकता है तो वो खुद मुसलमान है। और दूसरी सबसे बड़ी अहम बात इस सिलसिले में यह है कि इस्लाम यकीनी तौर पर, शायद हम इस बात का ईमान भी रखते हों लेकिन अमली तौर पर हमारे अंदर से ये बात निकल चुकी है कि ईमान, इस्लाम सिर्फ चंद रसूमात, इबादात का नाम नहीं है, बल्कि इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक पूरा निज़ाम हयात बनाया है। निज़ाम हयात का मतलब यह है कि इंसान अपनी पूरी जिंदगी को इस निज़ाम के तहत गुजार सकता है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये बातें हम सुनते हैं, सुनते आए हैं, हम में से हर शख्स इस बात को जानता है, दूसरों से कहता है, लेकिन ये बात कहने की नहीं है बल्कि ये बात समझने की है और अमल में लाने की है। इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुकम्मल निज़ाम हयात बनाया था और एक ऐसा निज़ाम हयात बनाया था जो तमाम ज़मानों के लिए था। इससे पहले जितने दीन अल्लाह तबारक व तआला ने भेजे वो चंद मखसूस ज़मानों के साथ ख़ास थे, मखसूस कौम के साथ ख़ास थे, लेकिन इस्लाम को अल्लाह तबारक व तआला ने जब भेजा तो इसका ताल्लुक किसी इलाके से नहीं है, इसका ताल्लुक किसी नस्ल, किसी कौम, किसी ज़बान के बोलने वालों या किसी ख़ास ज़माने के साथ मखसूस नहीं है, बल्कि इसका ताल्लुक उन तमाम लोगों से है, उन तमाम इंसानों से है जो रहती दुनिया तक इस दुनिया में आएंगे। और यही बात है कि हम इस दुनिया में इस बात का और इस्लाम की इस खसूसियत का मुशाहदा भी करते हैं कि इस्लाम के मानने वाले हर इलाके में मौजूद हैं। और ये बात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की मेहनतों, उनकी काविशों और उनकी कुर्बानियों के नतीजे में मुकम्मल हुई और मुमकिन हो सकी कि सहाबा किराम ने इस्लाम के पैगाम को पूरी दुनिया में आम किया। उन्होंने किसी इलाके के साथ इस दीन को मखसूस नहीं किया, किसी नस्ल के साथ मखसूस नहीं किया। और इस्लाम का सबसे बड़ा जो इम्तियाज था वो मुसावात था, वो समाजी बराबरी थी। इस्लाम ने आकर इस फर्क को मिटा दिया कि किसी गोरे को किसी काले पर, किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी आला खानदान वाले को किसी निचले खानदान वाले पर कोई फौकियत नहीं है, किसी तरह की कोई फौकियत नहीं है। इस्लाम ने उन तमाम हुदूद और उन तमाम नस्ली, इलाकाई और ज़बानी सरहदों को ख़त्म कर दिया और एक इंसानियत का पैगाम दिया, वहदत इंसानियत का पैगाम दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी अगर हम देखें तो आपके मानने वाले सहाबा इकराम किसी ख़ास इलाके से नहीं थे, अक्सरियत का ताल्लुक अरब से था, लेकिन हमें उसमें हबशा के बिलाल हबशी भी नज़र आते हैं, हमें रोम के सुहैब रूमी भी नज़र आते हैं और फारस के सलमान फारसी भी नज़र आते हैं। ये वो मिसाल थी जिसने तमाम दुनिया को मुतासिर किया था। और ज़रूरत इस बात की है मेरे अजीज़ों कि इस दुनिया में, आज के दौर में दोबारा हम इस्लाम के पैगाम को, इस खसूसियत को अमली तौर पर दोबारा आम करने की कोशिश करें, सिर्फ ज़बानी तौर पर या उसको लिख कर नहीं बल्कि अमली तौर पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को अल्लाह तबारक व तआला ने मुसलमानों के लिए एक नमूना बनाया और कुरान मजीद में जा बजा इरशाद फरमाया, एक जगह फरमाया कि जिसने रसूल की इत्तबा की उसने गोया अल्लाह की इत्तबा की। इससे बड़ी क्या बात हो सकती है कि अल्लाह की इताअत को खुद अल्लाह ने नबी की इताअत से मरबूत कर दिया, मशरूत कर दिया और उसके साथ जोड़ दिया। चुनांचे अल्लाह की इताअत उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल इत्तबा और आपकी इताअत ना की जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में अल्लाह ने इतनी जाज़बियत, इतनी असर पजीरी, असर अंगेजी और इतनी तासीर रखी है, इतनी कुव्वत और ताकत रखी है कि वो इंसानी जिंदगियों को तब्दील कर सकती है। चाहे इंसान कितना ही इंसानियत में बिगाड़ आ चुका हो, हम खुद अरब के माशरे का जायजा लें। जिस वक्त इस्लाम अरब के माशरे में आया, कुरान मजीद का नुजूल हुआ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी बनाया गया, तो हम उस माशरे का, उस समाज का जायजा लें। उस समाज का क्या हाल था? उसमें तालीम नहीं थी, उसमें अखलाकी कदरें ख़त्म हो चुकी थीं, उसमें इज्जत और शराफत नाम की कोई चीज़ नहीं थी, उसमें रहम दिली, इंसानी मुसावात, दूसरों के साथ हुस्न सलूक, इन जैसे जितने भी अच्छे अखलाक और सिफात हो सकती हैं वो तमाम की तमाम ख़त्म हो चुकी थीं। लेकिन उसी समाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ और सिर्फ 23 साल की कलील तरीन मुद्दत में वो अजीम इनकलाब बरपा किया कि वही बिगड़ा हुआ समाज, जो समाज दूसरों के लिए हिदायत नहीं बन सकता था बल्कि उसको खुद हिदायत की, इस्लाह की ज़रूरत थी, सिर्फ 23 साल के बाद वो समाज, वो आशरा इतना साले हो जाता है कि वो पूरी दुनिया के इस्लाह का काम करता है और उसी माशरे के अफराद पूरी दुनिया की हिदायत का काम अंजाम देते हैं। ये वो कुरान मजीद का करिश्मा था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा का वो मुअज्जज़ा था, जो मुअज्जज़ा सिर्फ उस ज़माने के साथ ख़ास नहीं मेरे अजीज़ों, बल्कि जब तक इस्लाम इस दुनिया में है, बल्कि जब तक ये दुनिया बाकी है, सीरत तय्यबा की वो असर पजीरी, वो तासीर, वो उसकी कुव्वत हमेशा बाकी रहेगी। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हम सीरत तय्यबा की अहमियत को समझें, हम इस बात को समझें कि मुसलमान होने के लिए अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखना, कुरान मजीद पर ईमान रखना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखना और आपकी सीरत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, उसके मुताबिक ज़िंदगी और ख़ास तौर पर इस्लामी ज़िंदगी का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में इरशाद फरमाया कि ला युमिनु अहदुकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जितु बिही, कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हो सकता जब तक कि उसकी ख्वाहिशात, उसकी आरजुएं, उसकी तमन्नाएं मेरे लाए हुए दीन के मुताबिक ना हो जाएं। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन कामिल, मुसलमान और ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि मेरी जात, यानी खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात, उसके वालदैन, उसकी औलाद, उसके माल दौलत और तमाम दुनिया की चीज़ों और तमाम दुनिया के लोगों से ज़्यादा अजीज़ ना हो जाए। ये वो ईमानी तकाजा है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से एक इलाही तकाजा है, एक अल्लाह तबारक व तआला ने हमसे मुतालबा किया है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह से ज़िंदगी गुजारी और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी पर सहाबा किराम ने जिस तरह चलकर दिखाया, उसी के मुताबिक चलकर हम कामयाब हो सकते हैं। अगर हम दूसरे मज़ाहिब का जायज़ा लें, उसमें जो शख्सियात जो उनके यहाँ मुक़द्दस समझी जाती हैं, उनकी काबिल एहतराम शख्सियात हैं, उन शख्सियात को जिस तरह से पेश किया गया है, अगर आप जायज़ा लें, तो या तो उनको खुदा का दर्जा दे दिया गया है जिसके बाद उनको रोल मॉडल और उनको उसवा बनाने का सवाल ही ख़त्म हो जाता है। क्योंकि जब हमारे सामने कोई ऐसी हस्ती होगी जो इंसान नहीं होगी तो हम उसको अपना रोल मॉडल नहीं बना सकते। चुनांचे मुसलमानों के लिए और इंसानों के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शक्ल में एक इंसानी रोल मॉडल बनाया गया, ताकि इंसान इस बात को समझ सके कि जिस तरह से वो इंसान थे हम भी इंसान हैं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी होने की हैसियत से जो खसूसियात दी गई थी वो दूसरे इंसानों को नहीं मिल सकती, लेकिन इंसान होने की हैसियत से और रोल मॉडल होने की हैसियत से आपको जो खसूसियात दी गई, आपने अपनी जिंदगी को गुजार कर जिस तरह से एक नमूना और उसवा तमाम इंसानों के लिए छोड़ा, वो हर इंसान के लिए काबिल अमल है। हर इंसान उस पर अमल कर सकता है, उसको अपने लिए उसवा और नमूना बना सकता है, उन नमूनों की रोशनी में अपनी जिंदगी को कामयाब बना सकता है। अल्लाह के बताए हुए रास्ते के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढाल सकता है। मेरे अजीजों और दोस्तों, इस बात की शदीद जरूरत है कि हम सीरत तैयबा का मुताला अपनी जिंदगी का एक मिशन बनाएं, और ये वो जरूरत है हमारी जिसको कि जिस तरह हम दुनियावी जरूरतों की अहमियत को समझते हैं। हम इस दुनिया में जब रहते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के काम हैं हमारे जिसको हम अपनी जरूरत की हैसियत से करते हैं। मेरे भाई और दोस्तों, एक मुसलमान होने की हैसियत से और एक कामयाब इंसान बनने की हैसियत से हमें इस बात को समझना होगा कि सीरत तैयबा का मुताला और फिर उसके मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालने की कोशिश करना भी उसी तरह हमारी इंसानी और दीनी ज़रूरत है, जिस तरह से कि खाना और पीना और इस दुनिया में दीगर ज़रूरियात को पूरा करना हमारी इंसानी ज़रूरत है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो न सिर्फ ये कि हम अपना खसारा करेंगे बल्कि आने वाली नस्लों का भी खसारा करेंगे। और ये बात हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि एक मुसलमान इस दुनिया में आकर यह बात नहीं कह सकता कि मैं फर्द वाहिद हूं, मैं कोई वाहिद शख्स हूं, बल्कि जब एक मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत को तस्लीम करता है, तो वो एक मिशन से जुड़ जाता है, उसकी जिंदगी एक मकसद के तहत गुजरती है, फिर वो दूसरे आम लोगों के तहत अपनी जिंदगी को बेमकसद जाया नहीं करता है, बल्कि उसकी जिंदगी का एक एक अमल, एक एक लम्हा बामकसद होता है। मेरे भाई और दोस्तों, इस बात की शदीद जरूरत है और हम तमाम को इसकी जरूरत है कि सबसे पहले तो ये कि हम खुद सीरत तैयबा का मुताला शुरू करें और सीरत तैयबा का बेजब्त बाकायदा और तसलसल के साथ मुताला शुरू करें। न सिर्फ हम खुद मर्द हजरात मुताला करें बल्कि हमारी ख्वातीन हजरात से भी गुजारिश है कि वो सीरत तैयबा का मुताला करें, सहाबियात की सीरत का मुताला करें और अपने बच्चों को भी सीरत तैयबा के उन अहम वाकयात से रोशनास कराएं, वाकिफ कराएं, जिसके नतीजे में उनकी जिंदगियां साले हों और एक कामयाब जिंदगी के तौर पर वो उभरें। और न सिर्फ ये कि वो कामयाब इंसान खुद अपनी जिंदगी में हों, बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वो मुफीद और कारामत साबित हो सकें। मेरे अजीजों, इस्लाम एक आफाकी मजहब है, उसका ताल्लुक किसी खास इलाके से नहीं, वो एक हमगीर मजहब है, वो एक आलमगीर मजहब है, उसका पैगाम तमाम इंसानों के लिए है और तमाम दुनिया के लिए है। लिहाजा इस्लाम का मानने वाला वो भी, उसका पैगाम भी, उसकी जिंदगी भी, उसकी दुनियावी मिशन भी किसी खास इलाके, किसी खास महदूद मकसद के साथ महदूद नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसकी जिंदगी के फायदे भी तमाम दुनिया के लिए आम हों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की अहमियत को समझने की तौफीक अता फरमाए और उसके मुताबिक हमें मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगियों को गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।